ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप 1946 में यूपी की धरनी देहरादून से आपका वहां पर जन्म हुआ है। वहां से आप निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। 62 में ही आपको यह ज्ञान मिला, और न सिर्फ ज्ञान मिला, न सिर्फ ज्ञान में चल पड़े लेकिन सेवाओं में भी लग गए। आसाम, गुजरात, बिहार आदि स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने, और फिर तो आप अपनी पढ़ाई भी पढ़ते रहे। 1967 में आपने धनबाद से अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष ONGC को ज्वाइन किया, और तब से लेकर भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पदों पर विराजित होकर आपने ONGC में लगभग 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। फिर जब 1995 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का उद्घाटन हुआ, वहां कोऑर्डिनेटर का पद रिक्त था, तो 1996 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उस समय आप सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट थे, लेकिन उस पद से रिटायरमेंट लेकर ज्ञान सरोवर अकेडमी का कोऑर्डिनेटर पद को संभाला। तो वर्तमान में आप कोऑर्डिनेटर हैं हमारे ज्ञान सरोवर अकेडमी के, और 1985 में आपने युवा विंग के सेक्रेटरी रहे, और उसके अंतर्गत करीब 12 युवा पदयात्राओं का भी आपने आयोजन किया। और 1988 में फिर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद को संभाला। वर्तमान में तो आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन हैं। साथ साथ हमारी जो गवर्निंग बॉडी ऑफ RERF है उसके भी आप सदस्य हैं। आपने कई सारी एग्जीबिशंस का निर्माण किया है, कई सारी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। नेशनल लेवल पर पर्यावरण श्री का भी अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने अवार्ड हासिल किए हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान हस्ती जिन्होंने मम्मा बाबा की साकार में पालना ली है, अनुभवों से भरपूर आज हमारे बीच है, और आज हमें अवगत कराएंगे कि अगर मगर के चक्कर से न्यारा रहने की कला क्या है। ऑलरेडी भ्राता जी टोल टैक्स में भीड़ होने के कारण देरी से आए, तो समय बहुत कम है, लेकिन भ्राता जी से रिक्वेस्ट है शॉर्ट एंड स्वीट, समय पर अपना वक्तव्य पूरा करेंगे, क्योंकि अगली क्लास डॉक्टर निर्मला दीदी की है, हमें उनका भी सम्मान करना है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, समय पर क्लास पूरी करेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बहन जी ने जो टॉपिक दिया उस टॉपिक की परीक्षा अभी आते समय ही हो गई, क्योंकि अगर भीड़ ना होती, यहाँ पर वैसे तो हिल स्टेशन है आबू, भीड़ होती है जनरल, लेकिन फ्राइडे को सबसे ज़्यादा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि फ्राइडे को जाने वाले भी सब ग्रुप होते हैं, वो सब निकलते हैं इसी वजह से, क्योंकि 11 के पहले निकल आएंगे तो उनका काउंट नहीं होता पैसा नेक्स्ट, और 11 के बाद पहले और जो ग्रुप आएंगे सैटरडे संडे की छुट्टी का लाभ लेकर, वो अगर ज्वाइन तब कर लेंगे 11 से पहले तो एक दिन का एक्स्ट्रा होगा, और 11 बजे के बाद करेंगे तो उनका ये काउंट नहीं होगा प्रेजेंट वन। तो इसीलिए जाने वालों का भी यही लक्ष्य रहता है कि हम 10 से 11 के बीच में यहाँ से निकल जाएं, और आने वालों का भी लक्ष्य रहता है कि जल्दी आके पहले घूम घाम लें और होटल में फिर एंट्री 11-12 बजे के बाद करेंगे तो फ्री उनका हो जाता है। तो अगर ऐसा फ्राइडे नहीं होता तो मैं 10 मिनट पहले आपके पास होता, बल्कि टाइम से पहले ही। मगर ड्रामा में ये नहीं था, है ना। ड्रामा में कल पहले भी इसी समय मिलना हुआ था, इसीलिए अगर मगर का पाठ तो यहीं से ही शुरू हो गया। वैसे अगर मगर का अनुभव हम सबको है जीवन में, ज्यादातर ये शब्द कब हम इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, जब पास्ट इंसिडेंट्स हो जाती है। अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता, अगर कहीं संबंधों में कटुता आई, अगर मैंने ये नहीं कहा होता तो संबंध में घनिष्ठता होती, प्यार होता, आदि आदि। अगर हाँ टाइम पर पहुंच जाता तो ट्रेन नहीं छूटती। तो ज़्यादातर पास्ट के लिए जो भूतकाल की चीज़ें हो जाती हैं उनको हम याद करते हैं, और उसमें अक्सर करके ये शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पास्ट हाँ के लिए ये यूज़ करते हैं। वहाँ पुराने ज़माने की चक्की माताएं भी बैठी हैं, हाँ अभी तो घर में सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, किचन के भी सारे पीसने के इलेक्ट्रिकल, लेकिन पुराने ज़माने में चक्की होती थी ना। कितनों ने ऐसी चक्की देखी है, हाथ खड़ा करें। देखी तो होगी अपनी दादा दादी को, माता को चलाते हुए, है ना, अभी भी है ना। हाँ, उससे जीवन का क्या सबक मिलता है, वो बात बुद्धि में रहे। हाँ, क्या जीवन का सबक मिलता है, उस चक्की में दो पार्ट होते हैं ना, तो एक पार्ट फिक्स होता है, दूसरे पार्ट को घुमाते हैं, बीच में अनाज डालते हैं, पिसता जाता है, निकलता जाता है, और बीच में अनाज साबुत थोड़ा सा रह जाता है। तो बड़ा कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पार्ट, दो पाटन के बीच में साबुत न बचा न कोई। तो जीवन के लिए ये दो पार्ट कौन से हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। मनुष्य भूत और भविष्य की ही चिंता करता रहता है, भूतकाल का सोचता ये नहीं होता तो ऐसा होता, उसका चिंता करता है और भविष्य चिंतन करता है, भूतकाल का और भविष्य का चिंतन और चिंता दोनों करता है। क्या होगा, अभी बच्ची की शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। तो ये दोनों पार्ट हैं जीवन के, भूतकाल और भविष्यकाल, और इसी में मनुष्य पिस्तर है। दो बाटों के बीच में साबुत बचाना कोई, लेकिन दूसरी लाइन बहुत जरूरी है, गौर से सुनना। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, और खूंट पकड़ कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। वो खूंट होता है बीच में ना, जहाँ अनाज डालते हैं वहाँ थोड़ा मोटा और साबुत जैसा, वो पिसता नहीं है, बाकी सब पिस के निकल जाता है चारों तरफ से। तो वो क्या है, वो है वर्तमान काल। एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। खाली भूत और भविष्य का चिंतन करते रहे पिस जाएंगे, लेकिन जो वर्तमान में जीते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति पीस नहीं सकती। वो जो उसमें खूंट पकड़कर वर्तमान, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट माने गिफ्ट। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, और जो प्रेजेंट में जीता है वो हमेशा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके निकलता है। तो हम सबको भी प्रेजेंट, हमारा तो प्रेजेंट कितना अच्छा है, संगम युग, भगवान का साथ और हाथ, नया जीवन, सब कुछ। तो इसीलिए प्रेजेंट में अगर जितना जिएंगे तो क्या होगा, उसमें विधि आज करने ना, जो अगर मगर से बचने की क्या है विधि, आज का शायद स्लोगन था ना, हाँ, तो उसका विधि बाबा ने क्या बताई, हाँ, बाप समान शक्तिशाली बनो। तो अभी हम उसका ही ज्यादा चिंतन करेंगे कि इसमें पिसने की बजाय कैसे हम क्या क्या विधि अपनाते जाएं कि शक्तिशाली होते जाए। तो इसमें एक तो सबसे पहला, हाँ, विधेय, लास्ट मुरली भी थी ना शिव जयंती की, लास्ट संडे की थी या क्या, अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने अंग्रेजी के कई शब्दों का अर्थ बताया था, याद है संकल्प में, हाँ, क्या क्या शब्द बताए थे, व्हाट, हाउ, नाउ, इन सब का अर्थ तो बाबा ने उसमें बताया था। कभी भी गुलजार दादी भी कहा करते थे यही शब्द समस्याओं की जड़ है, क्यों, क्या, कब, कैसे आदि आदि। तो जहां ये चीजें आती हैं वही समस्याएं खड़ी होती हैं। इसीलिए बाबा ने इसका इलाज क्या बताया है, फुल स्टॉप, बिंदी। फुल स्टॉप जब लगाना सीख जाते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कब, कैसे आदि आदि ये सब नहीं रहेगा। तो एक तो बाबा ने विधि बताई है कि ये जो तीन बिंदी की विधि है इसको लगाना सीखो। बिंदी हम लगाते हैं लेकिन बस कोई भी चीज देखो बिंदी से बनती है, एक बिंदी लगाई तब तो ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन बहुत बिंदी बनाते रहे लगाते रहे तो वही क्वेश्चन मार्क बन जाता है, बिंदियों से ही तो बनती है पूरी लाइन। तो इसीलिए अभी आवश्यकता यह है, एक तो हिस्सा है। दूसरा और क्या है, बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है कि ये जो सारा खेल है ना, मन जब मनुष्य पैदा होता है तो दो शक्तियां उस पर विशेष होती हैं, दो शक्तियों के साथ पैदा होता है। कौन सी दो शक्तियां, छोटा सा बच्चा भी एक दिन का है दो दिन का तो भी दो शक्तियां उस पर होती हैं हर एक पे, एक है याद रखने की शक्ति, दूसरी है भूलने की शक्ति। ये शक्तियों के साथ हम सब पैदा हुए हैं, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो जाते हैं भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए उसे बरसों तक याद रखते हैं। ये जीवन की कटुता है, विषमता है। किसी ने मेरे साथ खराब व्यवहार किया, संबंधों में कटुता आ गई, कोई नुकसान हुआ, ये भूल जाना चाहिए। चलो, जीवन तो एक चलती गाड़ी का नाम है, वो तो याद रहती ही है, वो भूलता नहीं। और जो याद रखने वाली बात होती है, क्या, जैसे आज ही अभी पूछें सुबह की मुरली की क्या क्या पॉइंट थी याद, कितनी रही होंगी। बहुत चीजें घर गृहस्थी की भी याद रखने की होती है, घर से चलते हैं काम पर, घर में कहते हैं अभी फलानी चीज घर ऑफिस से लौटते समय ले आना, भूल, वो अक्सर करके भूल जाए। तो इसलिए ये शक्ति जो है यथार्थ हम कैसे यूज करें, जहाँ याद रखने का है वहाँ याद की शक्ति, भूलने की बात है वहाँ भूलने का। तो ये होती है हमारी स्वस्थिति और परिस्थिति, जो गीता में भी कहा है ना, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, सब में समान स्थिति रहे स्थित प्रज्ञा, उसकी स्थिति जो है वो मजबूत, जो बाबा ने आज भी कहा ना, जो आज का विषय है। तो इसलिए ऐसी स्थिति कब रहेगी, हर परिस्थिति में समान रहे, कैसे रहेगी, उसमें ही उत्तर दिया है। हाँ, अपने लिए ही जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम अपनी स्वस्थिति को इतनी मजबूत करें कि परिस्थिति गौण हो जाए, सेकेंडरी हो जाए, नीची हो जाए, हमारी स्वस्थिति ऊंची हो जाए। होता उल्टा है कि परिस्थिति हमारी स्वस्थिति का निर्माण करती है। मानो शमशान घाट गए किसी मित्र संबंधी के संबंध में वहाँ मृत्यु हुई उसकी, तो वो परिस्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, वहाँ खुद अपनी स्वस्थिति भी बड़ी गमगीन हो जाती है, वैसा हो जाते हैं। और इसके विपरीत अगर कहीं कोई फंक्शन है, मैरिज पार्टी है, डांस वांस चल रहा है, तो फिर स्वस्थिति भी परिस्थिति के अनुकूल हो जाती है। तो होना ये चाहिए कि हम परिस्थितियों के अनुकूल ना हो, तो ये अगर मगर का क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का भी मौका मिला काफी, 7-8 साल, तो मैंने देखा हाँ बाबा को एक परिस्थिति आती थी, इतनी उम्र थी 93 ईयर्स की, तो खांसी रूपी परिस्थिति आती थी। कई बार मुरली चलाते चलाते बाबा को खांसी काफी आ जाती थी, आंख भी गीली हो जाती थी, हम सबको लगता था अरे बाबा को तो बड़ा कष्ट हो रहा है, आंख भी गीली हो गई जैसे। लेकिन बाबा ने क्या अपने लिए उसकी विधि रची हुई थी, खुद ही अपने लिए विधि रचनी पड़ेगी परिस्थितियों के ऊपर स्वस्थिति की विजय। तो बाबा के पास में ना अभी भी हिस्ट्री हॉल में है, आप देखते हो अभी तो 2 संदली पड़े, पहले 3 ही संदली थी, बाबा इस दरवाजे से आते थे, इस संदली पर बैठते थे, मामा इस संदली पर बैठती थी, बीच की संदली खाली रहती थी, और फिर बस, और पास में ही बाबा के पास लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का बचपन का फोटो था, और बाबा कहते थे देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, सतयुग से जन्म लेते लेते आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, पर शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है, शरीर भी तमो प्रधान है, इसलिए हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, खांसी आती है, तकलीफ होती है, और ये फैक्ट बता के फिर बाबा, लेकिन कल बाबा जाके देखो ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा कि सब सतो प्रधान होगा, तम तत्व भी सतो प्रधान होंगे, न कोई शरीर का व्याधि, न आत्मा का कोई रोग शोक नहीं, कितनी खुशी की दुनिया होगी। तो बस बच्चों को भी सदा खुशी में रहना चाहिए, बस बात उसका वर्णन करते करते बाबा खांसी की बात एकदम भूल करके फिर मुरली चलाने लगते थे। तो हमें भी ऐसा हर चीज का काट लाना चाहिए, परिस्थिति ऐसी हुई तो बाबा तुरंत उसके विपरीत उस परिस्थिति को ला करके बुद्धि में, सतयुग में कैसे होगा, फिर बच्चे खुशहाल हो जाते थे और बाबा बताते भी थे बच्चों को क्या करना चाहिए खुशी में। क्या बोलते हैं इसे, ठग्गियां मारनी चाहिए, सिंधी लोगों को तो मालूम होगा। तो खुशी में, खुशी हमारी कभी गायब ना हो, जो गुलजार दादी भी बोलते थे ना, और सभी दादियां बोलती है, हर स्थिति में रहे, तो फिर अगर मगर वाली स्थिति आएगी नहीं। क्योंकि पछताना, जब पश्चाताप होता है हमें किसी चीज का, क्रोध आया, आवेश में आया, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है, क्यों क्रोध किया, क्यों लड़ाई करी, ये नहीं करना चाहिए था, तो उससे क्या होता है, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, हमेशा विजयी रहेंगे। और क्या, ये सारा का सारा खेल मन का ही है, मन के अंदर ना जितना व्यक्ति, बाबा ने भी मन को जीता, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गायन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा, मन के ऊपर सारा खेल है। एक राजा के दरबार में एक साधु आया भिक्षा का पात्र लेकर के, और उसने राजा को कहा महाराज मुझे भिक्षा दीजिए कुछ, तो राजा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मंत्री को बोला जाओ राजकोष में से जाके इनको अशरफी सोने चांदी जो कुछ चाहिए सब लाके दे दो। मंत्री गया, मुट्ठी भर के लाया, पूरा दे दिया, फिर भी वो पात्र नहीं भरा। दोबारा गया, 3 बार गया, 10 बार गया, लेकिन देखने में वो पात्र छोटा था लेकिन भरता नहीं था। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, तो राजा ने कहा बड़ा आश्चर्य की बात है, देखने में इतना छोटा है लेकिन भर नहीं रहा है, जरूर इसमें कोई रहस्य है, महाराज आप बताइए क्या रहस्य है। उसने क्या बताया, उसने कहा महाराज राजा साहब ये पात्र जो है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और यहाँ मन होता है तो मन का ये स्वभाव है, संस्कार है, मन कभी तृप्त नहीं होता। एक इच्छा है वो पूरी कर दो, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो पूरी करो चार और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, तो कभी तृप्त नहीं होता। तो ये पात्र खोपड़ी का बना है, तो इसीलिए एक बात हमें ये देखनी होगी कि हमें भी ना मन को देखना है, जिसके लिए ही बाबा ने कहा रोज रात को सोते समय क्या करो, दरबार लगाओ। बाबा खुद भी दरबार लगाता था। दरबार से पहले बाबा ने क्या करा, जब बाबा ज्ञान में आए, बाबा ने के पास दो डायरियां थी, वो दो डायरियां हम लोग पुराने लोगों को दी गई थी, हम लोग पढ़ते थे कई बार, बाबा कई बार बातें सुनाया करते थे। तो एक दादा आनंद किशोर होते थे, उन्होंने वो उसके अंदर बाबा ने एक बार मन को पत्र लिखा। 1936-37 में बाबा ज्ञान में आ गए, परिवार वाले भी कुछ आ गए, लेकिन धंधा वगैरह समेटते समेटते वो भी समय लगा, और मन जो है बाबा ने देखा भाग जाता है। जैसे हम सबका अनुभव है, बैठे लाल लाइट भी हुई, योग भी है, गीत चल रहा है, संदली पर बहन भी बैठे हैं, दृष्टि भी ले रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन मन भाग जाता है। बैठे यहाँ हैं, मन कभी धंधे में, कभी व्यक्तियों की तरफ, संबंधों में, जहाँ भी मन का लगाव और झुकाव है वहाँ मन भाग जाता है। तो बाबा ने क्या करा, देखा काफी दिनों तक ये होता रहा, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे हुक्म पर चलना पड़े क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तुमने मुझ राजा को गुलाम बना लिया, और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। तू शक्तिशाली हो गया, तू जिधर जाता था मैं आत्मा राजा होकर भी कमजोर हो गया तेरे पीछे पीछे। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, उस लेटर की कॉपी हम लोगों को हिंदी में करके आनंद किशोर दादा ने दी थी। तो बुद्धि को भी बाबा ने लिखा, ये बुद्धि तू भी मन का साथ देती रही, तुम दोनों ने मुझे आत्मा राजा को गुलाम बना लिया। फिर बाबा ने लास्ट पैरा में लिखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूं हे मन हे बुद्धि, कि मैं आत्मा राजा अब पुनः अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, और अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति स्वमान की पोजीशन में स्थित हो गया, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना। अब चाहते तो हम लोग भी हैं कि मन हमारे कहने पर चले, जब कभी हमारा किसी से डिफरेंस हो, कोई लड़ाई हो, कोई बात हो, कहां सुनी हो, हे सहन शक्ति आओ, अब मुझे बल दो, हे समाने की शक्ति मेरे अंदर आओ, बुलाते हैं, लेकिन अनुभव ये कहता है कि अक्सर करके नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम पहले समान की सीट पर स्थित होके उसे ऑर्डर नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, ऑफिसर है, आज एक जगह पोस्टिंग है उसकी, अपनी पोजीशन है, तो वो जिसको ऑर्डर करेगा सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है, पावर है। कोई पॉलिटिशियन है, जब तक इलेक्शन में जीता हुआ है, पावर है, सब बात मानेंगे। लेकिन जब एक बार वो सीट से उतर गया, कोई ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया, अगर वो अपनी पुरानी जगह आए छुट्टियों में या कभी, तो कोई ऑर्डर मानेगा उसका? नहीं, वो सीट पर ही नहीं है। तो हमारे साथ भी यही होती है कि हम स्वमान की सीट पर नहीं रहते, तो हमें फिर शक्तियों को, गुणों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, वो नहीं आते, तो इसीलिए हार माननी पड़ती है, और तब ये अगर मगर की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है, इतने स्वमानों की लिस्ट है, 100 से ज्यादा स्वमानों की लिस्ट, पांडव भवन में भी किचन के पास सामान की लिस्ट लगी है ना, वो भी आप लिखो, देखो, फोटो खींचो और रोज प्रतिदिन सामान को याद करो। मैं विजयी रतन हूँ, मैं माला का मणका हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये शक्ति, समाने की शक्ति तुम कैसे नहीं आओगी, तुम्हें मैं ऑर्डर करता हूँ। और उस समान की सीट में स्थित हो करके आप शक्ति का आवाहन करेंगे, अनुभव करेंगे कि वो आए और आपने परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कई प्रकार की परिस्थितियां होती है। नॉर्मल केस में उन परिस्थितियों को बांटते हैं आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कि शारीरिक समस्याएं, बीमारी, रोग, शोक आदि, एक है व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, और दूसरी है मन की परिस्थिति। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, इसके अंदर हम विजय कैसे प्राप्त करें? कोई भी परिस्थिति आए, हम सदा विजयी होके निकले। एक व्यक्ति गया, थोड़ा अशांत था, गुरुजी के पास गया। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, 8-10 चेले बैठे हुए थे, वो भी जाके बैठ गया, गुरुजी का प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन सुनते सुनते भूचाल आया, अर्थक्वेक। अब वो तो कच्चा झोपड़ा जैसा था, छत भी कच्ची थी, सब लोग नीचे बैठे थे, बड़ी तेजी से सब हिलने लगा, धरती हिलने लगी। भूकंप आया तो सब एकदम चेले भागे, जो सुन रहे थे बाहर की तरफ भागे, दूर दूर दूर, गुरुजी आओ आओ, आप भी भागो, ये बहुत हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन गुरुजी वहीं बैठे रहे। वो सबने बहुत कोशिश करी, गुरुजी वहीं। थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया, गुरुजी सारे जो चेले थे आए लौट के, उन्होंने कहा, गुरुजी आपको डर नहीं लगा? इतनी तेजी से सब हिल रहा था, हम सब तो भाग गए बाहर, दूर दूर खुले में चले गए, लेकिन आपके ऊपर तो यही था, यही गिरता तो आपको बहुत चोट लग जाती। तो गुरुजी पहले तो शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे थे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहा, गुरुजी आप तो वहीं की वहीं बैठे हुए थे, सुना होगा ना? नहीं, हमने तो देखा, आप तो वहीं बैठे थे कहीं। नहीं, फर्क इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर जहां हलचल नहीं थी। बाहर तो तुम जिधर भागे उधर भी हलचल थी, तो लेकिन उधर रिलेटिवली सेफ था, तुम खुले में भागे, लेकिन मैं ऐसे स्थान पर भागा जहां हलचल नहीं थी। तो हम भी सदा, कभी जब हलचल हो, परिस्थितियां हो, परीक्षा आए, कोई समस्या आए, विघ्न आए, तो क्या करें? बाहर का तो हम इलाज करें जो प्रॉब्लम है, लेकिन हम अंदर जाने का प्रयास करें, अंदर रियल सॉल्यूशन, क्योंकि अंदर अचल स्थिति है। बाहर बाबा ने भी बताया है, लास्ट पेपर ही वही होगा। कौन सा? बाहर अति हलचल, लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है, अंदर जाना, जो जानते हैं, सीखते हैं, अति अचल। तो हलचल में भी हम अचल रहेंगे, फिर ये अगर मगर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आई वहां पर भी बचेंगे थोड़ी, क्योंकि बाबा ने तो बोला 5 तत्वों का भी वार होगा, ग्रह युद्ध भी होगा, जल तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब का तो होगा ही, युद्ध का भी होगा। ऊपर बाहर खुले में भी भागेंगे, खुले में ही ऊपर से बम गिर गया, उसका क्या करेंगे? तो चारों तरफ हलचल होगी, लेकिन अगर हमें अंदर भागना आता होगा तो हम अति अचल रह सकेंगे, फिर ये अगर मगर के विघ्न से सदा के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर टच वो ही होगा जिसमें हमारी सेफ्टी होगी। बाबा ने कहा है, मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन लगाई है। कौन सी? बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर। मैं तो संदेश भेजूंगा, मैं तो उनको टच करूंगा, बच्चे इधर जाओ ये करो, मैं जो करूंगा वहां सेफ्टी होगी। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, जैसे मोबाइल कई बार मैच नहीं करता है उसके टावर के साथ, सुन नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। टीवी होता है, रेडियो होता है, स्टेशन तो बहुत अच्छा है, गीत आ रहे हैं कुछ, लेकिन हमारा अगर सेटिंग नहीं होगी सुन नहीं सकते, काम ही नहीं करेगा। ऐसी अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर नहीं होगी तो बाबा तो बंधा हुआ है टच करने के लिए, लेकिन हम कैच करके उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी। इसीलिए ये कोशिश करते रहे कि लाइन क्लीन और क्लियर रहे। और इसके लिए बाबा ने कौन सी बात बताई है, बाबा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है, हा? कौन सा? सच्चाई। ये भी सच्चाई सफाई जो है ना, वो सच्चाई मानो बाबा, इसीलिए नाम ही है बाबा का क्या, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा सत्य खुद है, जो व्यक्ति खुद जैसा होगा उसे वही प्रिय होगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान में जाता होगा वो आध्यात्मिक ज्ञान वाले को ढूंढ लेगा, कोई खराब शराबी होगा उसे शराब वाला मिल जाएगा, जगह का पता मालूम कर लेगा, आदि आदि। तो इसीलिए बाबा को जितना हम अंदर से सच्चे और साफ होंगे तो क्या होगा, बाबा को प्रिय होंगे। इसीलिए बाबा ने सर्टिफिकेट का तो बताया ही है ना, सबको मालूम है ना कितने सर्टिफिकेट लेने हमें, हाँ सबको मालूम है। तो भगवान से सर्टिफिकेट लेना है तो सत्यता हो, सच्चाई हो, तो भगवान से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विदाउट फेल भगवान के प्रिय होंगे। इसीलिए कहा है सच्चे दिल पर साहब राजी, वो कहा है। और पहचान क्या है, मैं कहूं मैं तो सच्चा हूं, मेरे सब साथी नहीं समझते, लेकिन मुझे मालूम है मैं सच्चा हूं। लेकिन सच्चे की पहचान तो कुछ होगी ना, है? देवता स्वरूप। अच्छा, देवता स्वरूप तो बड़े सजे सजाए सोने चांदी के है, अभी कहां से लाएंगे। सच्चे है फरिश्ता भी, वो भी अवस्था बनते बनते। सच्चा जो होगा ना, हाँ सच्चे की पहचान क्या, यहां पर वो सदा खुशी में रहे। खुशी के लिए तो कुछ खर्चा करना ही नहीं है। तो सच्चे सच तो बिठो नाच, खुशी में नाचता रहेगा, ये इजी पहचान है। खुशी गायब नहीं होगी, परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी होगी, मालूम होगा ये तो पेपर आया है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गर्मी के बाद सर्दी, बरसात, ऐसे दुनिया तो परिवर्तनशील है। तो आज ये परिस्थिति आई, ये परिवर्तन होगी, कल फिर मैं खुशी में नाचूंगा, खुशी आएगी, आज भले ही ये पेपर आया है, तो ये स्थिति रहेगी तो सदा खुश रहेगा। एक तो ये पहचान है, और क्या है, हाँ सबसे सच्चे की नहीं, दूसरा सर्टिफिकेट लेने के लिए है अपने से सर्टिफिकेट, ये बड़ा मुश्किल है अपने से सर्टिफिकेट, क्योंकि अपने को हम खुद अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे, अपने से सर्टिफिकेट कब नहीं मिलता ये बताओ, अपनी आत्मा कब खाती है हमें, जब कोई मर्यादा का उल्लंघन हो, गलत काम किया हो, जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी पुराने संस्कारों के वश कर्मेंद्रियों से हो जाता है, तो अंतरात्मा हमारी खाती है, खुशी गायब हो जाती है। तो इसीलिए अपना सर्टिफिकेट लेना है तो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। सीता ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया ना, लकीर जो लक्ष्मण खींच के गए थे, कितनी समस्याओं में आ गए। तो इसीलिए अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए कदम कदम पर चेक करते रहो, क्या ये मर्यादा में ज्ञान की मर्यादा इस बात को कहती है, ये करना चाहिए, खुद ही जवाब मिलेगा। फिर भले पुराने संस्कार के कारण हम कर ले, लेकिन नहीं, जवाब जरूर मिलेगा अंतरात्मा, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है। और तीसरा, बाहर वालों से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, परिवार से, और सबसे बड़ा डिफिकल्ट है ये। बाबा कहता है सबको एक बात प्रिय है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, हर एक को सम्मान देते चलो। बस वो ही नहीं होता, अपने परिवार में भी ना, हमारा तो अब परिवार यही है, बाहर की दुनिया को तो वो कोई क्रोध करेगा, कोई गलत काम करेगा, हम केयर नहीं करेंगे, अज्ञानी है। लेकिन अगर परिवार वाला कोई क्रोध करेगा, कोई बाहर खाएगा पिएगा, सिनेमा देखेगा कोई, तो हमारे मन में हलचल होने लगेगी। देखा, ये 10 साल पुराना, अभी तक भी इसमें ये संस्कार है, ये 15 साल पुराना, तो क्या होगा, आपस में रिस्पेक्ट भाव खत्म हो जाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते हैं। सामने से भी आएंगे तो बस वो उधर से नजर बचा के निकल जाएगा, हम इधर से ना गुड मॉर्निंग ना ओम शांति, कुछ नहीं होगा। और इस कारण से क्या होगा, संबंधों में कटुता आती जाती है। तो क्या करना चाहिए कि ये संबंधों में कटुता ना आए, उसके लिए सदा ये सोचे, क्योंकि परिवार तो यही रहेगा, सतयुग में भले नाम रूप अलग अलग होगा, लेकिन यही सब भाई बहन होंगे, परिवार ही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी का भी कोई भी संस्कार देखें, उसे क्षमा कर दें, उसे दिल में न रखें, उसकी बात देखी भूल जाओ। भूलने की शक्ति तो आई है, जब से पैदा हुए हैं याद रखने और भूलने की शक्ति है, लेकिन यूज नहीं करते, वो बात याद में रहती है, अच्छा ये तो ऐसा है, इसने तो मेरी प्रगति के मार्ग में बाधा डाली, इसने तो बहन जी से मेरी शिकायत कर दी, ये हो गया। तो उससे क्या होगा कि दूर हो जाते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि भूल नहीं पाते और क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। अपने को कायर कहलाना पसंद करोगे, कोई नहीं करेगा। हम तो महावीर हैं, बाबा कहता है महारथी हो महावीर हो, तो इसीलिए जब महारथी है, कायर नहीं हूं, और कायर ना होने का एक लक्षण सबसे बड़ा यही है, वो कुछ देख क्षमा करता चलेगा, बात को दिल में नहीं रखेगा। तो आज जब मधुबन पावन भूमि पर आए हैं, बट्टी कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य रखे, मैं किसी की कोई बात देखूं मुझे दिल में नहीं रखनी, वो कर रहा है वो पाएगा, उसका मुझे क्षमा कर देना है, क्षमा मांगनी भी है, अगर मेरे से कोई गलती हो दूसरे से क्षमा मांग ले और उसको क्षमा कर भी दे, तो क्या होगा, ये अगर मगर वाली स्थिति भी नहीं आएगी और हम जीवन में आगे बढ़ते रहे। और क्या, हम लोगों को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है दूसरे को वो ही करे, बाप बेटे को, सास बहू को, भाई भाई को, अपने अनुरूप अपनी इच्छा, मैं बड़ा हूं अनुभवी हूं इसे मेरा कहना मानना चाहिए, ये करना चाहिए। तो क्या होता है, भारतीय सिद्धांत शुरू से ही रहा है एक, क्या करो, जियो और जीने दो, ये सभ्य समाज का सिद्धांत है समाज के अंदर। लेकिन जंगल रूल क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बड़ा है शक्तिशाली है उसे ही जीने का अधिकार है, जो जंगल का रूल है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेगा, छोटा अपने से छोटे को, बस सबसे बड़ा शेर जंगल का राजा वो समझता है मैं राजा हूं, तो वो तो जंगल रूल है। अगर हमने भी यही सिद्धांत रखा, मैं बड़ा हूं अनुभवी हूं मेरी बात उसे माननी चाहिए, तो ये तो जंगल रूल हुआ। हम सभ्य समाज सतयुगी संसार में जा रहे हैं, वहां तो यही होगा, जियो और जीने दो बस। कभी भी, हाँ मानो बच्चा है कोई, उसे गाइडेंस की जरूरत है, उसे बता दें भाई इतना ये इंटरनेट नहीं देखना, ये मोबाइल पर ये नहीं करना, आदि आदि जो कुछ भी हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि वो 100% मेरी बात मान लेगा। नहीं मानता, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और नहीं मानता और कटुता पैदा हो जाती है संबंधों में। इसीलिए सिद्धांत का पालन करें, बताएं छोटे को, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें। इसीलिए कहा गया दो शब्द जो है ना, ये हमेशा दुखदायी होते हैं, एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। हम अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये ऐसा करे, हमने जो कहा वो नहीं करता तो हमें खिन्नता होती है, और अगर हम किसी की उपेक्षा करते, नेग्लेक्ट करते हैं, ओ मैं बड़ा हूँ, मैं रिच हूँ, ये तो साधारण है, ये गरीब है, मैं तो ज्ञानी आत्मा हूँ, ये तो अज्ञानी है, कोई भी उस दूसरे की उपेक्षा की तो उसको दुख होता है। तो क्या होता है, उसके मन से दुआएं नहीं निकलती। आजकल बाबा और दादियां सब यही कहते हैं, दुआएं लो और दुआएं दो। ये दुआएं ही हमें अंदर तक बिल्कुल एकदम ऐसा निर्मल बना देती है, और दुआओं के आधार पर ही हम सदा आगे बढ़ते रहते हैं। तो जीवन में एक यही ऐसा होना चाहिए कि दुआओं की हम अपेक्षा भी करें, दुआएं दे भी और दुआएं लेते चले, तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और क्या करें दुआओं के अलावा, इतनी जो बातें बताई है ना, ये सब प्रैक्टिकल हैं, अपना पालन करने की है। ममा ने भी देखो, हाँ मुझे ममा की एक बात याद आती है, तो मैं, ये तो टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मुख्य बात मैं बता देता हूँ। बाबा की 18 जनवरी को मैं यहाँ पर आसाम में पोस्टेड था, इंजीनियरिंग करने के बाद धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो IIT है वहाँ से 67 में पास किया, और उसके बाद बाबा के कहे अनुसार आसाम में चला गया, पोस्टिंग हुई, और बाबा ने कहा था और उस अनुसार युक्ति से 17 जनवरी को अपने पास बुला लिया। तो 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो हमने ये देखा कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, हम सब लोगों को भी कर्मातीत बनना है, तो एक तो ये स्थिति होती है मन जीते जगत जीत वाली। बस हमेशा बाबा के पास जाते थे, बाबा से कोई बात कहते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान होता था। लेकिन इन अंतिम दो दिन में हमने ये देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा, मन की प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी कर देते थे। ये है कर्मातीत अवस्था की एक निशानी। दूसरा, बाबा की देखे उस अंतिम दिन में, ये हम सब लोगों को कर्मातीत अवस्था को पालन करना है तो इसलिए ये धारण करना है। दूसरा, कोई काम पेंडिंग ना रहे। अंत समय में अंत मते सो गति का जो गायन है ना, तो अंत समय याद ही वो आता है, या तो जहां पर अति स्नेह हो या अति घृणा हो। इसीलिए बाबा ने कहा है सबके साथ समान स्थिति हो। स्नेह तो सबसे रखना है, कबीरदास जी भी कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि किसी से अति दोस्ती होगी उसे दिल की बात बताए बिना रह नहीं सकेंगे, बैर की बात हुई अंत समय वो याद आया वैसा ही जन्म हो जाएगा, बाबा की याद तो रही नहीं। तो इसीलिए आवश्यकता एक ये है कर्मातीत अवस्था पाने के लिए है कि हमारी स्थिति ऐसी हो, कोई काम पेंडिंग ना रहे, रहा हुआ ना रहे। बाबा ने भी अंतिम दिन ही म्यूजियम का बिल्डिंग को क्लियर किया जहाँ आज इतनी सेवा हो रही है। बाबा ने अंतिम दिन सारे पत्र लिखे, कोई भी पेंडिंग नहीं रखा। तो इसीलिए अगर हमारे मन में कोई बहुत अच्छे काम की इच्छा है, भाई कन्यादान करें, सेवा में दें, धन लगा के ये सेंटर बना दें, कोई भी चीज, क्योंकि अचानक अरेवर रेडी का पार्ट तो एकदम सडनली बहुत तेजी से शुरू होगा और चल रहा है, तो किसी काम को पेंडिंग न रहने दें, छोड़ न दें, वो शुभ काम में देरी न करके पूरा कर लें। तो क्या होगा, यहाँ बहुत भाई बहन आते हैं, जब उनका भोग लगाते हैं, जब शरीर छोड़ जाते हैं, कहते हैं मेरे मन में यही इच्छा रह गई, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, ऊपर भी मुझे जैसे कि अशांति है। तो ऐसा स्थिति ना आए जब बाबा ने ज्ञान दिया है। तो ये कर्मातीत अवस्था की बाबा की अंतिम समय की, और अंतिम दिन भी ना बाबा ने हर कर्म भोग के ऊपर योग बल विजय प्राप्त कर लेता है कर्मातीत अवस्था अगर हो तो। बाबा को भी ये देखा, बड़ा दो दिन तबीयत ठीक नहीं थी 17-18 जनवरी, लेकिन बाबा ने जल्दी क्लास करके और बस ऐसी स्थिति बना ली। बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा। बाबा ने क्लास भी कराई और एक बार भी न बाबा को खांसी आई न कोई तकलीफ हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कर ली। तो ये सब धारणाएं भी हमें भी देखनी है, और ये भी होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा हमारी इच्छा मिटती होगी, हमें पहले से भान हो जाएगा हाँ अब मेरा ये अंतिम दिन है, अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो हम उस दिन उसके लिए जैसे मानसिक रीति से तैयार हो जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा तैयार हो गए थे। ममा का मैं बता के समाप्त करता हूँ। 65 में ममा ने शरीर छोड़ा तो हिस्ट्री हॉल ही था, सबको मालूम ही है ममा की तबीयत कैसी थी, सबको अंगूर वगैरह भी दिए। लास्ट में जब ममा शरीर छोड़ के ऊपर गई सूक्ष्म वतन, तो सूक्ष्म वतन वासी बाप दादा ने पूछा, ममा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो ममा पहले चुप रही, ममा ने कहा नहीं बाबा मैं तो स्थिति नहीं है कर्मातीत का अनुभव किया। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, बच्चे भी सब बुला रहे हैं, जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। ममा को भेजा, ममा आई। फिर थोड़ा समय रहने के बाद जब ममा वापस गई तो ममा से फिर बाप दादा ने सूक्ष्म वतनवासी पूछा कि भाई ममा करके आई कर्मातीत अवस्था का? तो मामा ने कहा नहीं बाबा। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा ही उसके लिए था कि बाबा जब मैंने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, शरीर तो ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई, तो मैं ये अनुभव नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो कोई भी आत्मा वापस अभी तुम परमधाम नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जिस स्थिति में परमधाम से आई थी अति पवित्र स्थिति में, वही स्थिति जब तक नहीं आई है तब तक अपनी सीट पर जाके बैठ नहीं सकती, खींच नहीं सकती वो सीट। तो इसीलिए अब जाके अपना बचा हुआ हिसाब किताब जो कुछ रहा है वो चुकतू करो और पुनर्जन्म में गए। ममा सबको मालूम है कहाँ है, वो तो ड्रामा में पार्ट किसी का नहीं होता। लेकिन उसके बाद अंत में बाबा के साथ फिर सबको जाना है, जब सब हरेक अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर लेगा और उसके बाद परमधाम में जाके अंत में कोई रिग्रेट ना रहे, अगर ऐसा होता तो ये कर लेता, अगर ये होता मगर ये नहीं हो सका, जैसा विषय है ना, तो कोई भी रिग्रेट ना रहे। उसके लिए यही है कि बाबा मामा को सच्चे रीति से फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े और कोई भी ऐसा बात ना हो जो हमें पश्चाताप करने के लिए मतलब मौका करना पड़े और हम फिर संपूर्ण होने से रह जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर देह दुनिया। दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
तो बहुत सुंदर अपने अनुभव से आप सभी को भ्राता जी ने लाभान्वित किया। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।